देवियों सज्जनों, गीता के 17 चैप्टर 17वां अध्याय में हम डिस्कस कर रहे हैं मनुष्य की प्रवृत्ति के हिसाब से उसकी जिस तरह के इनहेरेंट नेचर होता है उससे जो अलग अलग काम करता है, खाना पीना, पूजा करना, लोगों से व्यवहार करना, कोई भी अच्छा बुरा जो भी हम काम करते हैं वो सब तीन तरह के क्लासिफाइड होते हैं व्यक्ति के नेचर के हिसाब से, उसके स्वभाव और कर्मों के हिसाब से। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा भाव से कोई काम करता है शास्त्र का अनुसरण न करते हुए तो आप उसे क्या कहेंगे? तो तभी कृष्ण कहते हैं वो श्रद्धा भी समझने की जरूरत है, वो श्रद्धा भी डिपेंड करता है व्यक्ति के नेचर के ऊपर, उसके जो जिस तरह के एटीट्यूड है, जिस तरह के नेचर है उससे डिफाइंड होता है। अगर गलत सोच वाला व्यक्ति उसकी परम श्रद्धा भी बड़ी अच्छी से अच्छी श्रद्धा भी वो गलत ही होता है। तो ये देखने की जरूरत है कि वो किस टाइप का व्यक्ति है, वो किस तरह के आचरण करता है, उसका खान पान रहन सहन भाव अभाव सब कुछ कैसा है, फिर उससे हिसाब से पता लगता है कि उसकी श्रद्धा किस टाइप की होगी। श्रद्धा 100% है पर अगर वो तमोगुणी श्रद्धा है, रजोगुणी है, तो वो उससे डिफाइन होता है कि अच्छा या बुरा है। पिछले बार भी हमने सुना खाने पीने के बारे में कि तीन तरह का खाना होता है। आज हम चर्चा करेंगे इसी तरह जो हम धार्मिक कृत्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं और जो भी हम धार्मिक या आध्यात्मिक काम करते हैं वो हमारा किस कैटेगरी में आता है ये समझने की जरूरत है। मेरे साथ मिलकर बोलिए अफलाकांक्षी भीर यज्ञों विधि दृष्टो यज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय ससात्विकः। जो सबसे द फर्स्ट कैटेगरी का या जो बेस्ट कैटेगरी का यज्ञ है जिसमें अफलाकांक्षी भी, जब कोई व्यक्ति, यहां यज्ञ का अर्थ प्राचीन काल में, क्योंकि बार बार मैंने कहा कि जो कर्मकांड की जो हमारा तरीका था वो केवल यज्ञ ही था, अब आजकल बहुत तरह के पूजा पद्धति अलग अलग बन गई है, तो आप कोई भी पूजा पद्धति फॉलो करते हैं या यज्ञ करते हैं वो अगर फल की इच्छा के बिना किया जा रहा हो, इसीलिए आप ईश्वर की पूजा करते हैं, देवताओं का यज्ञ करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है, और उसके बदले कुछ हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं प्रभु से, भगवान से या किसी से भी। नंबर दो, अगर वो विधि दृष्ट हो, जो भी उसके लिए नियम व्यवस्था बनाई गई है, जो भी सिस्टम उसके लिए डेवलप किया गया है, कैसे आपको करना, क्या रीति होनी चाहिए, क्या उपाय होना चाहिए, ये नहीं कि रैंडमली मुझे जैसा लगा करोशिन डाल के भी हवन कर दिया, पत्ते जलाकर भी कर दिया, कैसा भी कुछ भी जो मेरा मन हुआ। अगर आम कुछ रूल्स या रेगुलेशन का फॉलो करते हैं और मन को समाध उसमें लगा करके करते हैं, फोकस्ड होकर के करते हैं, तो फिर वह सात्विक, वो यज्ञ सात्विक हो जाता है, वो पूजा सात्विक हो जाती है। तीन चीजें बताया, हम कोई भी पूजा उपासना करते हैं अगर उसमें कोई फल की इच्छा नहीं हो, हम किसी कामना के कारण नहीं कर रहे हैं कि इससे मुझे ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा। दूसरी चीज है कि हम जो भी शास्त्र विधान है उसको फॉलो करके करते हैं। ये शास्त्र विधि भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि मेरा गुरु जो बोल जाए वही शास्त्र है। बाजार में वो फुटपाथ से लेकर के बड़े बड़े पब्लिशर तक हजारों तरह के बुक्स हैं, तो जो मुझे सही लगे, जो मेरे गुरु ने मुझे बोला हो वही शास्त्र हो जाता है। शास्त्र का जो भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वही शास्त्र है, उसके अलावा और कुछ नहीं। आप सुंदरकांड को शास्त्र मान के चलेंगे वो शास्त्र नहीं हो सकता, करोड़ों माने अरबों माने करोड़ों माने
ऐसा नहीं हो सकता। जो डेफिनेशन है शास्त्रों में है, सभी विद्वानों को पता है, ऋषियों को पता है, सबको पता है। तो छल कपट से किसी भी बुक को शास्त्र मान के करना नहीं चलेगा। जो शास्त्र है तो है, आप अपने छल कपट से जिस तरह के अलग अलग किताबों को शास्त्र मान के चलते हैं तो वो नहीं चलेगा। तो शास्त्र के विधि के अनुसार जो निर्दिष्ट है और मन आपका लगा होना चाहिए। ज्यादातर हम देखते हैं आम लोगों में, वो मंदिर में हो, घर में पूजा करें, कहीं भी करें, वो पूजा को छोड़ करके बाकी सब चीजों में मन लगा रहता है। पूजा में बैठे रहते हैं, यज्ञ में बैठे रहते हैं, और उस यज्ञ के छोड़कर के सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर लोग सब जगह लगा रहता है। वो कैटेगरी अभी हम सुनेंगे वो किस कैटेगरी में आते हैं। पर अगर आपका मन लगा रहता है, आप मन को लगाते हैं, लगेगा कब? जब आपकी भक्ति हो, जब आपकी डिवोशन हो, जब आप आपकी आपके मन में भक्ति भाव हो। अगर आप रैंडमली करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं, जो कि आगे आएगा तमोगुणी रजोगुणी, तो आप कभी भी फोकस्ड होकर नहीं कर सकते। तो आस्तिकता के साथ मन लगा के फल की इच्छा के बिना जब हम कोई भी काम करते हैं तो वो सात्विक बन जाता है। ध्यान रखिए देवियों सज्जनों, यज्ञ की जो डेफिनेशन हम पहले भी बहुत बार सुने हैं, कोई भी काम आप करते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में आता है, ऐतरीय ब्राह्मण में, यज्ञों वही श्रेष्ठ तमम कर्म। कोई भी काम जो श्रेष्ठ हो वो सब यज्ञ हो जाता है। श्रेष्ठ की परिभाषा क्या है? तीन चीजें उसमें होनी चाहिए कोई भी काम आप करते हैं। पहला, वो तो विधि निर्दिष्ट होना चाहिए, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते रहना चाहिए। ये तो किसी भी देश में, सोसाइटी में, समाज में, कम्युनिटी में, घर में हम रहते हैं, चलते हैं, व्यवहार करते हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते तो वो परिवार, वो देश, वो समाज और इंडिविजुअल, अगर मैं अपने लाइफ में भी कुछ पर्टिकुलर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता हूं तो मेरे लाइफ भी मिजरेबल हो जाता है। फैमिली का भी वही रूल है, देश का भी, समाज का भी। इसी तरह पहला चीज है कि जब आप किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, नंबर टू, जब आप निष्काम भाव होते हैं, सेल्फलेस होकर करते हैं, कुछ एक्सपेक्ट करके खुद के लिए नहीं करते, खुद को अगर खुद के लिए कुछ इच्छा भी है वो कम्युनिटी की पार्ट बन के हम एक्सपेक्ट करते हैं, और नंबर थ्री, जब कर्तव्य भाव से करते हैं कि मुझे करना है, ये मेरी ड्यूटी है। तो कोई भी काम देवियों सज्जनों हम करते हैं, कोई भी काम, आप ऑफिस में काम करते हैं, दुकान में बिजनेस करते हैं, या रास्ते में गाड़ी चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सब काम यज्ञ बन जाता है जब ये तीनों शर्त तो उसमें लग जाते हैं। और हम कितने भी लंबे पूजा पाठ करें, कितने भी लंबा चौड़ा, कितने दिनों तक लगातार पूजा पाठ यज्ञ कर्म करते रहें, अगर इनमें ये तीन चीजें नहीं है, वो विधि शास्त्र की विधि को फॉलो करना, निष्काम भाव, जो डिटैच्ड फीलिंग विथ सेल्फलेसनेस, और तीसरी कर्तव्य भाव, इट्स माई ड्यूटी, ये तीनों जहां इन्वॉल्व नहीं है वो यज्ञ भी बेकार हो जाता है। और अगर ये जहां इन्वॉल्व है वो कोई घर गृहस्थ की काम भी यज्ञ बन जाता है। तो इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी जो हम करते हैं, ऐसा नहीं कि वो मैटर नहीं करता, पर उससे ज्यादा मैटर करता है कि उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है, हमारी भावना क्या है। भावना अगर अच्छी हो, खराब से खराब काम भी पूजा बन जाती है। खराब काम इसीलिए कि सोशियली हम एक तरह के ट्रेंड बना रखे हैं, क्या अच्छा क्या बुरा उसके हिसाब से लोग जज करते हैं। पर जिसके अच्छे इंटेंशन हो उसे कोई खराब काम नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखिएगा। फिजिकली हम जो कुछ करते हैं वो मन से मोटिवेटेड होकर के होता है। अगर आपका मन जैसा होगा आप इसी तरह का काम करेंगे। आप सारे शास्त्र पढ़े हो, जानते हो, समझते हो, उसके बावजूद भी आपसे वही गलत काम होंगे, वही सही काम होंगे जो आपका मन मानता है, जिस तरह के मन आपने बनाया है, जिस तरह के अपब्रिंगिंग हुई है, जिस तरह के माइंडसेट आपने क्रिएट किया है, उसी तरह के चीजों को हम करेंगे। कितना भी पता हो कि ये गलत है, उसके बावजूद भी हम वही खाएंगे, वही करेंगे, क्योंकि हमारा मन उसी तरह की डेवलप्ड हुआ है। जानने के बावजूद ये गलत है, हम वही करेंगे। जानने के बावजूद ये सही है, हम वही करेंगे, क्योंकि उसी तरह का मन बना है। महाभारत में दुर्योधन की बड़ा प्रसिद्ध उक्ति हमने पहले भी सुनाया, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मम न च मे निवृत्ति, त्वया हृषीकेश हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। दुर्योधन कहता है, मैं जानता हूं धर्म क्या है, पर क्या करूं, मेरा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं पाता है, मैं कर ही नहीं पाता हूं। और मैं ये भी जानता हूं अधर्म क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, पर क्या करूं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं ऐसे चीजें करने में। ऐसा नहीं कि ये कोई दुर्योधन की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, हम सबके साथ यही प्रॉब्लम है। हम सबके साथ, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। हमें पता है क्या खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या नहीं खाना, क्या देखना, क्या नहीं देखना, किसको करने से नुकसान है, किसको करने से लाभ है, पर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं जो करना चाहिए, और ऐसा हम कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि और कोई कहीं से आपका कंट्रोल होता है, वो आपका मन का जो गहरा स्रोत है, जो सबकॉन्शियस है, जहां से आपका संस्कार बना हुआ है, उससे आपकी डिफाइन होता है कि आप कैसे हो। इसीलिए ये बहुत मायने रखता है कि आपके पीछे क्या फीलिंग चल रही है जिस चीज को हम कर रहे हैं। अच्छे से अच्छी चीज के साथ अगर बैड इंटेंशन है, तो वो काम का फल सोसाइटी में अच्छा हो सकता है, पर स्पिरिचुअली जब कहते हैं, जो चीजें सेल्फ को इंपैक्ट करता है वो सब स्पिरिचुअल होता है। देवियों सज्जनों, जो मुझे अपने अंदर इंपैक्ट करता है, फिजिकली नहीं, मेरे मन में, मेरे बुद्धि में, मेरे आत्मा में जो इंपैक्ट करता है, वो सब स्पिरिचुअल होता है। तो स्पिरिचुअली वो सब कितना भी सोशियली वो अच्छा लगे, पर अगर मेरे इंटेंशन खराब हो, उसका मुझे बुरा रिजल्ट मेरे अंदर मिलता है। और अगर मेरा इंटेंशन, मेरा मन शुद्ध हो, पवित्र हो, अच्छे भाव से कर रहा हो, तो मुझे उसका अंदर स्पिरिचुअली मैं गेन करता हूं, मैं डेवलप्ड होता हूं। इसीलिए कहा वो यज्ञ सात्विक होता है जिसमें कामना नहीं हो, जो शास्त्रों के दृष्टि से किया जाता हो, और मन जिसमें लगा हुआ हो, जिसमें भक्ति और डिवोशन हो। राजसिक पूजा व राजसिक यज्ञ क्या है, जो सेकंड लेवल का है, बोलिए, अभिसंधायतु फलम दंभार्थमपि चैवयत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। वो यज्ञ को, उस यज्ञ को आप राजसिक समझना, फुल ऑफ पैशन वाला समझना, जो सेकंड कैटेगरी का है, जिसमें अभिसंधायतु फलम, कुछ फल की इच्छा के साथ हम कोई ईश्वर भक्ति का काम करते हैं, वो यज्ञ हो, ध्यान हो, कुछ भी करते हैं, कुछ सांसारिक चीजें पाने की इच्छा से, मेरा वो हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, कुछ पाने की इच्छा से जब हम यज्ञ करते हैं, या दूसरी दंभ के लिए, दंभ मतलब हिपोक्रेसी, पब्लिक मुझे जाने, रेस्पेक्ट करे, सोसाइटी में मुझे, मैं इस नाते जाना जाऊं कि मैं बड़ा धार्मिक हूं, मैं बड़ा भक्त हूं, बड़ा अच्छा आदमी हूं, बड़ा श्रेष्ठ आदमी हूं, लोग मुझे माने, रिकॉग्नाइज करें, ये दंभ होता है, दैट इज कॉल्ड हिपोक्रेसी, पाखंड। जो मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरी, मुझे लगता है कि ये करना चाहिए, मैं इसीलिए करता हूं कि इसको करने से मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, अंदर मेरा भाव अलग है, पब्लिक में मेरा रेपुटेशन अलग है। अगर वही रेपुटेशन बनाने के लिए अपने आप को कुछ सोसाइटी में एक अलग तरह से रिकॉग्नाइज्ड कराने के लिए अगर मैं कुछ करता हूं, यज्ञ करता हूं, हे भरत श्रेष्ठ, हे भरत वंश के श्रेष्ठ अर्जुन, वो मीडियम कैटेगरी के लोग होते हैं, वो सेकेंड लेवल के लोग होते हैं, जो कुछ भी करते हैं विद पैशन करते हैं, कुछ लोभ, कुछ ईर्ष्या, कुछ लालच के कारण करते हैं, कुछ फायदे के कारण करते हैं। या तो वो फायदा कुछ मैटेरियल हो इसलिए करूं कि ये फायदा हो, या सोशल रिकॉग्नाइजेशन भी एक फायदा है उस कारण करते हैं, वो राजसिक कार्य होता है। तीसरा कहा, विधि ही नमस्त्रष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसं परिचक्षते। तो सबसे निम्न कोटि का, सबसे लोअर लेवल का यज्ञ या पूजा क्या है, जिसको तमोगुण से भरा हुआ कहते हैं। जैसे तमोगुणी व्यक्ति का खाना हमने देखा, जो सड़ा गड़ा खाता है, अधपका कच्चा खाता है, बदबूदार, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, करना कुछ नहीं ना, आलसी है, किसी भी कैसा भी मिल जाए बस कर्म नहीं करना, ना शारीरिक ना मानसिक, कुछ नहीं करना, विधिहीनम। वो यज्ञ या पूजा तमोगुणी होता है, जिसमें किसी भी तरह का कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते। अभी कुछ दिन पहले भारत में एक छोटा विवाद, भारत में तो विवाद चलता ही रहता है, तो एक बड़े कथाकार हैं, बड़े फेमस कथाकार हैं, प्रसिद्ध हैं, तो उन्होंने अपने दिमाग में कुछ उजुल फुजुल विचार आया, तो उन्होंने अपने भक्त को लेकर के शादी करानी, कोई भक्त को बोले श्मशान में शादी करनी चाहिए, तो उन्होंने उसको पुरोहितों को मिला, पुरोहितों से पूछा, कोई भी पुरोहित राजी नहीं हुआ श्मशान में जाकर के शादी कराएं, ना ये कोई शास्त्र सम्मत है, ना कोई कॉमन सेंस इसको मानता है, भाई कोई शुभ चीज अच्छी चीजें श्मशान में, एक अशुभ चीज उसमें कैसे किया जा सकता है। अब कुछ सनक चढ़ा बाबा जी के दिमाग में, अब बड़े प्रसिद्ध हैं, करोड़ों भक्त हैं, तो बोले कोई बात नहीं, मैं लेकर करवाऊंगा। तो खुद ले गए श्मशान में, वो चिता अग्नि के चारों तरफ, वो लड़का लड़की भी राजी हो गए, वहां फेरा लग गया। क्या इससे मिला पता नहीं, किस लिए किया, क्यों किया, भगवान को पता, बस सनक चढ़ाए, विधि ही नाम, कोई भी विधि नहीं मानना। असृष्टान्नम, ध्यान दीजिएगा, जब आप यज्ञ करें और आपने किसी को खिलाया नहीं, कोई दान नहीं किया किसी की, अन्न दान जरूरी है भोजन यज्ञ के साथ, तो भी वो यज्ञ तामसिक यज्ञ, थर्ड कैटेगरी के यज्ञ में आता है। मंत्रहीनम, अगर उस यज्ञ के साथ कोई विचार इन्वॉल्व नहीं है, मंत्र वेद के मंत्र हो सकते हैं, पर अगर वेद के मंत्र पढ़ा भी नहीं जा सकता किसी पर्टिकुलर रीजन से, आपका विचार, मंत्र का अर्थ विचार भी होता है, उसके विचार आपके अंदर होना चाहिए, वो विचार पूर्ण होना चाहिए। और अदक्षिणम, जिससे कराया अगर आपने रिस्पेक्टफुली उसका अपना फी नहीं दिया, श्रद्धा विरहितम, अगर आपके अंदर उसके प्रति कोई डिवोशन नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, कोई आस्था नहीं है, बस करने के लिए कर जाते हैं, तो ऐसा यज्ञ बड़ा निम्न कैटेगरी का होता है, तामसिक यज्ञ होता है। तो चार पांच चीजें जो इसकी कंडीशन है, सबसे खराब कैटेगरी के यज्ञ, ऐसा यज्ञ जिसके साथ आप कोई शास्त्रों के विचारों को फॉलो नहीं करते, उसके साथ कोई दान पुण्य नहीं करते। आज भी भारत में जो श्रद्धा भाव से बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, वो लंगर चलता रहता है, वो चलता रहना चाहिए, यज्ञ के साथ ये बड़ी जरूरी है। प्राचीन काल में हमारे शास्त्रों में एक व्यवस्था आती है, धर्म रिलीजियस, धर्म के दो अंग है, ध्यान दीजिएगा, एक धर्म जो हमारे व्यवहार से जुड़ा हुआ है, हमारा आचरण कैसा हो, व्यवहार कैसा हो, दूसरा धर्म जो रिलीजियस एक्टिविटीज, पूजा पाठ वगैरह से जुड़ा हुआ है। तो धार्मिक व्यक्ति की जो चर्चा होती है, कहते हैं कि उसको प्रतिदिन इष्टापूर्त कर्म करना होता है। वो इष्टापूर्त क्या होता है? इष्ट कहते हैं यज्ञ को, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अपूर्त कहते हैं जो सोशल सर्विसेस होते हैं, कि जब आप कोई धार्मिक कार्य करते हैं, इष्ट करते हैं, यज्ञ करते हैं, आपको बड़ा रूप में करने का मन करा तो साथ में आपको लोग गरीबों को खाना दीजिए। पहले वो प्याव खोदते थे, प्याव समझते हैं, जहां वो रास्ते में पानी पिलाते हैं, कोई पथिक कोई राहगीर जाता है, प्यास लगता है, उसको पानी पिलाने के लिए प्याव खोलते हैं, धर्मशाला खोलते हैं। कोई पहले जमाने में इतने गाड़ी मोटर ऐसे होते नहीं थे, तो लोग पैदल जाते थे, कोई गाय बैल घोड़ा यूज करते थे, दिनों लग जाते थे, हफ्तों लग जाते थे, महीनों लग जाते थे एक दूसरे जगह पर पहुंचने के लिए। तो रास्ते में उनकी ठहरने की व्यवस्था के लिए तो कोई धर्मशाला पंथशाला खोल दिया, कहीं कुआं खोद लिया, कहीं तालाब खोदा, किसी की स्वास्थ्य का ख्याल रखा, कोई गरीब को खाना खिलाया। ये सब चीजें अपूर्त कर्म माना जाता था, जिसको आजकल की भाषा में हम सोशल सर्विस कहते हैं। ये यज्ञ के साथ जुड़ा हुआ कर्म होता है। अगर वो अपूर्त कर्म आप नहीं करते तो इष्ट बेकार जाता है। इष्ट का अर्थ यहां डिजायर्ड नहीं, इष्ट का अर्थ यज्ञ। वो यज्ञ तामसिक हो जाता है जिस यज्ञ के साथ अपूर्त कर्म नहीं जुड़ा होता है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जिस इस इष्ट नारी समाज में जुड़े हुए हैं, तो बहुत तरह के अपना आर्य समाज सोशल सर्विस में इन्वॉल्व रहता है। हमारे यंग वॉलंटियर से लेकर के वैसे भी बड़े लोग अलग अलग तरीके से हजारों योजनाओं में इन्वॉल्व रहते हैं। ये अगर नहीं होगा तो ये बेकार है ये यज्ञ। वो दोनों वो तमोगुणी बन जाएगा। इसीलिए कुछ भी नहीं कर सकते तो किसी को खाना खिलाना, इसीलिए का सृष्टान्नम, जहां अन्न बांटा नहीं जाता है जिस यज्ञ के साथ, वो यज्ञ भी अधूरा हो जाता है। और जहां मंत्र मंत्र तभी नहीं होता है जब आप केयरलेस होते हो, यू डोंट केयर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता। और श्रद्धा अगर मन में ना हो, और जिससे आपने करवाया उसको अगर आपने दक्षिणा नहीं दी, तो ये सारी चीजें, ये सब ये इसीलिए आप करेंगे क्योंकि आपके मन में कोई अश्रद्धा भाव हो, कोई ये एटीट्यूड की प्रॉब्लम होता है सारा, ये एटीट्यूड की बात होती है। अगर आपके एटीट्यूड सही हो तो जो भी आप यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे, वो सत्वगुणी होगा, नहीं तो ये तमोगुणी हो जाता है। आगे देखेंगे उस धार्मिक क्रिया का एक अंग होता है, जैसे पूजा या यज्ञ एक अंग है, यज्ञ का अर्थ भी देव पूजा है, तप करना। तप का अर्थ होता है कुछ शारीरिक मानसिक और बौद्धिक तपस्या साधना करना, जिससे मेरा मन शरीर बुद्धि शुद्ध हो, अच्छा बने। केवल कर्मकांड से मेरी भक्ति में बढ़ोतरी नहीं होगी, ईश्वर प्राप्ति का रास्ता नहीं खोलता। वो कर्मकांड के साथ मुझे कुछ शारीरिक मानसिक बौद्धिक श्रम करना होगा, जिससे मैं अपने आप को उसके लिए तैयार करूं। उस तैयारी का नाम है तपस्या, तप। और वो तीनों लेवल पर होता है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और यहां गीता में 17वें अध्याय में कहता है वाचिक रूप से भी, मतलब ओरली मेंटली एंड फिजिकली। तीन लेवल पर जो आप श्रम करते हैं, एफर्ट करते हैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए, वो तपस्या कहलाती है, जो कि आपको धर्म और अध्यात्म में आपके रास्ते को क्लियर करता है। तो पहले बोलिए मेरे साथ, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। तपस्या तीन तरह का है वो हम बाद में चर्चा करेंगे कि उनमें सात्विक कौन है, तामसिक कौन है, राजसिक तपस्या कौन सी है। वो तीन कैटेगरी बाद में आएगा। अभी एक ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है कि तपस्या किस लेवल पर हम करते हैं। एक फिजिकली कुछ करते हैं वो तो भी तपस्या है, कुछ मेंटली करते हैं वो भी तपस्या है, कुछ ओरली करते हैं वो भी तपस्या है। ये तीनों को समझें, फिर हम समझेंगे कि हम किस कैटेगरी की तपस्या करते हैं। पहले देखेंगे शारीरिक तपस्या क्या होती है। फिजिकली जो रिलीजियस एक्टिविटी है जिससे हम अपने आप को शुद्ध बनाने की कोशिश करते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, ऑनरिंग देवाज ट्वाइस बर्न्स प्रिसेप्टर्स एंड एनलाइटेंड पर्सन्स। देवता कौन है? जो रेगुलर आते हैं उनको पता है, जो भी जिसका भी हमारे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन है। निरुक्त में यास्क के निरुक्त एक शास्त्र है, वो देवता को डिफाइन करता है, देवो दानात्वा दीपनात्वा द्योतनात्वा द्युस्थानो भवति इतिवा। जो देता है, जो प्रकाशित करता है, जो प्रकाशित होता है, या जो तारे नक्षत्र आदि जो प्रकाशक द्युमंडल में रहने वाले सूरज वगैरह, वो सब देवता है। अगर इसको समराइज्ड करके बोले, कंटेम्प्रेरी वे में बोले, जिसका भी मुझे प्रकाशित करने में, जैसा जिस लेवल पर मैं जैसा हूं, इस स्थिति में मुझे लाने के लिए जिस जिसका कंट्रीब्यूशन है, वो सब मेरे लिए देवता है। वो मेरे इंडिविजुअली माँ बाप हो सकते हैं, वो कोई ऐसे लोग टीचर हो, कोई भी हो जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, ज्ञान दिया, अच्छा बनाया, जैसा भी बनाया, कमाने लायक बनाया, जो भी। या वो नेचर के पार्ट हो जो सबके लिए जिनका कंट्रीब्यूशन है, वो हवा पानी पेड़ पौधे जंगल सूरज चांद आसमान धरती नदी नाले पहाड़ पर्वत, विजिबल इनविजिबल डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व। हवा नहीं होता तो मैं नहीं होता, पानी नहीं होता तो मैं नहीं होता, ये माउंटेन्स ये ओशियंस नहीं होते तो इस तरह के एटमोस्फियर इकोलॉजी नहीं होता कि मैं सस्टेन कर पाऊं, तो इन सबका डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोल है। तो जिस जिसका मेरे जीवन में किसी भी तरह का रोल है वो सब देवता है। उनके प्रति रेवरेंस, उसके प्रति पूजा का भाव, सम्मान का भाव हमेशा रखना, कभी कभार नहीं, हमेशा रखना और उनको उस तरह के ट्रीट करना। दूसरा कहा द्विज, जिनका दोबारा जन्म हुआ है, द्वि कहते हैं दो, जन्म जिसका हुआ है। तो दो तरह के चीजें होते हैं जो द्विज होते हैं। मनुष्यों में जो पढ़ा लिखा हो जाता है वो द्विज होता है, मनुष्यतर प्राणियों में जैसे दांत को भी द्विज कहते हैं, क्योंकि दांत दोबारा उगता है। पहले तो जो सहज रूप से जो उगता है फिर वो गिरता है, नए दांत उगते हैं, दो बार जन्म होता है। तो जितने ये पक्षी हैं, चिड़िया हैं, सांप मछली वगैरह जो अंडे से पैदा होते हैं, एक तो मां के पेट से अंडे के रूप में, दूसरा अंडे से भी दोबारा पैदा होते हैं, इसलिए वो भी द्विज होते हैं। उनकी चर्चा यहां नहीं करते। मनुष्यों में जो द्विज होता है, द्विज जो मां के पेट से जन्म होता है, हम सब केवल मां के पेट से पैदा हुआ और कुछ सीखा नहीं, जाना नहीं, वैसे ही बढ़ गए, वो द्विज नहीं होता है। जो अनपढ़ है, अनकल्चर्ड है, अनएजुकेटेड है, अनसिविलाइज्ड है, वो द्विज नहीं है। प्राचीन काल में ये सब करने के लिए, ये सब जानने के लिए एक संस्कार होता था, उसको कहते थे उपनयन संस्कार, जिसमें जनेऊ धारण करते थे। जिसके पास जिसने जनेऊ पहना वो द्विज कहलाता था। क्यों? अब पढ़ने लिखने के लाइन पर उपनयन संस्कार होता था जब बच्चा गुरुकुल के लिए जाता था, आजकल की भाषा में स्कूल में एडमिशन लेने लेता था। इसका मतलब इधर ही इज इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग गेटिंग नॉलेज, अगर किसी में जनेऊ दिखता था और ही इज ऑलरेडी ए लर्नड पर्सन, या तो वो विद्यार्थी है ब्रह्मचारी या ज्ञानी व्यक्ति पढ़ा लिखा है, उसे द्विज कहते थे। तो हर वो द्विज को सम्मान भाव से देखना, गुरु जिनसे हमें ज्ञान मिला, जो हमसे बड़े हैं किसी भी तरह से बड़े हैं, या जिनसे हमें किसी भी तरह का ज्ञान मिला, वो स्कूल कॉलेज से लेकर के बाजार में कहीं से किसी भी तरह का ज्ञान मिला, और प्राज्ञ जो सोसाइटी में ऐसे लोग जो बहुत ज्ञानी हैं, किसी भी स्कूल में, किसी भी फैकल्टी में, किसी भी ज्ञान की किसी भी डायमेंशन में जिनका नॉलेज है, जिनकी सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूशन है, वो जो ज्ञानी लोग हैं उन सब के प्रति पूजा भाव, रिस्पेक्ट हो। ये शारीरिक तप का पहला तप है। फिजिकली जो आप रिस्पेक्ट करते हैं देवताओं को, ज्ञानियों को, द्विजों को, अपने गुरुजनों को, वो एक तपस्या है, शारीरिक तपस्या। दूसरा कहा शौच, शरीर को साफ रखना। ध्यान दीजिए, शरीर को साफ रखना यह भी एक तपस्या है, क्योंकि अगर आपके शरीर साफ नहीं है तो मन साफ नहीं हो सकता। तपस्या का आफ्टरऑल पर्पस क्या है, बताया तो वही, अपने आप को शुद्ध करना, अपने आप को इतना पवित्र बनाना कि हम ईश्वर को पाने के लिए योग्य बन सके। इसलिए शरीर को शुद्ध रखना, मन को शुद्ध रखना, शरीर के कपड़ों को, जहां रहते हैं घर, जहां हम बैठते हैं, जहां हम पूछते हैं, जहां हम खेलते हैं, हर वो जगह जहां हम यूज करते हैं, वो सब अगर साफ है तो साफ रखने की कोशिश करते हैं, तो हम शारीरिक तप का दूसरी कड़ी हम पूरा करते हैं। तीसरा है आर्जवम, अर्जवता, सरलता, सीधापन, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सिंप्लिसिटी, ये सब एक ही चीज है जी। व्यक्ति जितना सिंपल होगा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, जो मन में है वो बोल जाएगा। और ये कब आता है, जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है, जब आप कैसी भी सिचुएशन आगे हो उसको फेस करने के लिए मेंटली प्रिपेयर होते हो, आपको उसके लिए स्टेमिना चाहिए, डेयरिंग नेचर चाहिए टू बी ए सिंपल पर्सन। ध्यान रखिए, वो अंग्रेजी में एक बड़ा सुंदर प्रोवर्ब है, इट्स वेरी हार्ड टू बी ए सिंपल पर्सन। सिंपल होना सबसे मुश्किल काम है देवियों सज्जनों, कुटिल होना, कॉम्प्लिकेटेड होना, हार्ड होना, रूड होना, इट्स वेरी इजी। पर अगर आप उस सिंप्लिसिटी के लिए ट्राई करते, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ तपस्या। सिंप्लिसिटी, आप सीधे साधे हैं, जो मन में है वो विचार में है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको समझना आसान है। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है कि व्यक्ति क्या चाह रहा है। ब्रह्मचर्यम, अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, अपनी वासनाओं को, लस्ट को रेगुलेट करना, कंट्रोल में रखना, और एक ऐसी सिचुएशन पर पहुंचना कि इच्छा ही खत्म हो जाए सेंसुअल प्लेजर को पाने की, जो एफर्ट है उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। अहिंसा, ये अहिंसा तो आपको किसी भी प्रकरण में, वो धर्म के डेफिनेशन हो, योग में हो, तपस्या, हर जगह अहिंसा आती है। पतंजलि लिखते हैं कि आपकी जितने भी एथिक्स है, मोरालिटीज है, और अभी कभी आपको डाउट्स हो कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं या गलत, कभी कभी आप सच बोलते हैं, हो सकता है सच बोलने से किसी को हर्ट होता हो, आप कुछ और करते हैं, अपरिग्रह करते हैं, धन संचय नहीं करते, उससे हो सकता है किसी को नुकसान हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, आपको डाउट हो, कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं पर दूसरों पर इसका बैड इंपैक्ट पड़ रहा है, किसी को हर्ट हो रहा है, तो मैं करूं न करूं। कितनी भी अच्छी एथिकल चीजें आप करते हैं, पतंजलि कहते हैं अगर आपको डाउट हो तो उसकी जो कसौटी होगी वो अहिंसा होगी। मतलब अगर मेरे किसी भी अच्छे काम से मैं इंटेंशनली किसी को हर्ट कर रहा हूं तो वो अच्छा काम रियलिटी में बहुत गंदा काम है। इवन सच बोलना, अहिंसा सत्य अस्तेय चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, कुछ भी ए टू जेड जितने भी एथिक्स हैं, मोरलिटीज हैं, वर्च्यूज हैं, अगर उसका रिजल्ट हिंसा में कन्वर्ट होता है, हिंसा मतलब किसी को हर्ट करने में, हार्म करने में कन्वर्ट होता है, तो वो पाप है। ये बेसिक चीजें हैं और ये इसको अगर हम अंदर कल्टीवेट कर सके कि मेरे किसी भी व्यवहार में हिंसा तो नहीं हो रही है, हिंसा सिर्फ फिजिकली नहीं होता है, दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा पाप है वो हिंसा है, वायलेंस, किसी को हर्ट करना, किसी को हार्म पहुंचाने की इच्छा रखना। ये अगर ये आपकी ढीला है अहिंसा वाली, ऊपर से आप कुछ भी करें सब खराब जाएगा, सब ढीला जाएगा। अगर कोई एक स्क्रू टाइट करने से मोस्ट ऑफ थिंग आपकी जनरली ठीक हो जाएंगे, अगर आप हिंसा पर काबू पाते हैं, अपने मन में, शरीर में, वाणी में आने वाले जो हिंसक प्रवृत्ति है, किसी को चोट पहुंचाने की, हर्ट करने की जो भावना है, वो अगर हम कंट्रोल कर पाते हैं, मोस्ट ऑफ थिंग्स विल बी कंट्रोल। अहिंसा, किसी को चोट पहुंचाने की, हर्ट करने की से दूर रहने का जो कोशिश है, आसान नहीं है, नेचुरली ह्यूमन बींग है, आम इंसान है, हर तरह के विचार हैं, पर अगर हम उस एफर्ट को कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि उससे हम ऊपर उठे, तो हम शारीरिक तपस्या कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम चर्चा करेंगे वाचिक तपस्या, वाणी से भी तपस्या। स्लाइड में आप देख सकते हैं पहला वाक्य अनुद्वेग कर्म वाक्यम, ऐसी बातें बोले जो सामने वाले को, जिससे आप बात करते हैं या जिसके बारे में बात करते हैं, उसको चोट ना पहुंचे। अगेन अहिंसा इज बॉटम लाइन, किसी को कष्ट ना हो, इंटेंशनली आपका इंटेंशन ना हो। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, आपकी वाणी उद्वेग पैदा करने वाला है, किसी के अंदर स्ट्रेस पैदा करने के लिए ना हो, टेंशन पैदा करने के लिए ना हो, तो ये तपस्या है। हो सकता है ये आसान नहीं है, क्योंकि ये आसान नहीं है इसीलिए इसको तपस्या कहा। वी हैव टू पुट आवर एफर्ट ऑन दैट। अगर आप उस एफर्ट में आ चुके तो आप तपस्या की पहली सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं। जितना एफर्ट ज्यादा होगा आगे बढ़ेंगे। इसी तरह मानसिक तपस्या, फिर हम चर्चा करेंगे ये जो तीन तरह की तपस्याएं हैं, वो तमोगुणी व्यक्ति इसको कैसा करता है, रजोगुणी व्यक्ति कैसा करता है और सत्वगुणी व्यक्ति कैसे करता है। ये सब बातें हम अगले रविवार को सुनेंगे। जरूर आइए अगर सुनना है तो, मेरे ख्याल से आएंगे सब। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ यहीं विराम करते हैं। ओम शांति।